ఓం శాంతి. ఆప్ స్థాన్ స్థాన్ సే బిజినెస్ వింగ్ కే భాయి బహన్ మౌంట్ అబూ మే ఆయే, తో యే కౌన్ సా బిజినెస్ స్థాన్ హై, యహాన్ క్యా బిజినెస్ హోతా హై, కిస్కే సాథ్ హోతా హై, కిస్ చీజ్ కా హోతా హై, తో ఆప్కో ఆస్తే ఆస్తే బతాయా జా రహా హై. యే తో ఆప్ దేఖ్ రహే హై కి యే ఏక్ విచిత్ర కా విచిత్ర సా స్థాన్ హై. యహాన్ కిసీ కమోడిటీ ప్రోడక్ట్ కిసీ చీజ్ కా బిజినెస్ తో దిఖాయి నీ దే రహా, తో జరూర్ కోయి అలగ్ తరహ కా బిజినెస్ యహాన్ హోతా హై. ఔర్ ఆప్కో అధ్యాత్మిక శక్తీకరణ ద్వారా బిజినెస్ ఔర్ ఇండస్ట్రీ మే సఫలతా కా టాపిక్ దియా గయా హై. అబ్ పెహ్లీ బాత్ తో యే హై, హర్ వ్యక్తి చాతా హై కి మేరా బిజినెస్ పార్ట్నర్ జో హో సబ్సే బడియా హో, సబ్సే తాకత్వర్ హో, ఉస్కే సాథ్ మే కేవల్ జుడ్ జాఊ తో మేరే పౌ బారా హో జాయే. హర్ వ్యక్తి జిందగీ మే క్యా చాతా హై, జిందగీ మే హర్ వ్యక్తి క్యా చాతా హై, ఖుషీ కహా జాతా హై, హెల్త్ వెల్త్ హ్యాపీనెస్ ఖుషీ. వెల్త్ యానీ ధన తో బీచ్ మే ఆతా హై. అచ్చా ఆప్ సబ్ ఖుషీ చాతే హై, జో చాతే హై జరా దాయా హాత్ ఉఠాఓ, ఖుషీ చాతే హై, బహుత్ అచ్చా. చాతే హై కా క్యా మత్లబ్ హువా, హై నహీ క్యా? చలో చాతే హై. ఆప్ పర్మనెంట్ ఖుషీ చాతే హై యా టెంపరరీ, యే భీ బతా దో. టెంపరరీ తో ఆప్కో దునియా మే మిల్ జాయేగి, ఉస్ ఖుషీ కా క్యా ఫాయదా జిస్కే బాద్ ఫిర్ స్పేస్ ఆ జాయే, ఫిర్ కిసీ కా సాంస్ రుక్ రుక్ కే ఆయే, బహుత్ దిక్కత్ కీ బాత్ హై, హార్ట్ టిక్ టిక్ కర్కే చలే. పర్ అబ్ ఆప్ బతాయే కి ఆప్ పర్మనెంట్ ఖుషీ చాతే హై, పర్మనెంట్ సదా. అబ్ హాత్ ఉఠాయే జో పర్మనెంట్ చాతే హై. ఆప్ తో నహీ ఉఠా రహే, ఆప్కో తో నహీ చాహియే, హై నా? అచ్చా ఠీక్ హై. మాన్ లో ఆజ్ బర్సాత్ కా దిన హై, భగవాన్ ఆప్సే బహుత్ ఖుష్ హై, వో కహతే హై ఆజ్ మే ఆప్కో పర్మనెంట్ ఖుషీ దే హీ దేనీ హై. ठीक है, रखोगे कहां? क्वेश्चन जो है उसको रखोगे कहां बताइए. आज परमात्मा आपसे बहुत खुश है कि आप मेरे बड़े से बड़े बिजनेस मैन के हेडक्वार्टर में आ गए, बहुत अच्छा. आपको परमानेंट खुशी तो उसके लिए देना चुटकी का काम है, रखोगे कहां? क्या कहा? अंदर? अच्छा, वाह. अच्छा आपका अंदर कितनी देर रहेगा? आप रहेंगे तो आपका अंदर रहेगा ना, कहां रखोगे? एक बच्चा था, वो अमेरिका में बहुत मशहूर साइंस की लेबोरेटरी में पढ़ने चला गया. उसके दादाजी इंडियन थे, वहां कहीं मिलने चले गए उसको, बेटा क्या कर रहे हो? बोला, दादाजी आपका नाम रोशन हो जाएगा, मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूं, ऐसा लिक्विड बना रहा हूं जिसमें जो चीज भी डालोगे ना वो लिक्विड हो जाएगी। दादा तो बेचारे गांव के थे, बोले अच्छा, कहते कुछ भी डालोगे वो फटाफट लिक्विड हो जाएगी। तो दादाजी ने भी यही सवाल पूछा गया, बेटा उसको रखोगे कहां? इसलिए अगर आप परमानेंट खुशी चाहते हैं तो आपको परमानेंट उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। आज के जितने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि बस इस जिंदगी में हम खूब धन कमा लें, खूब प्रॉपर्टी ले लें, खूब जो कुछ भी खूब कर लें। कितनी देर के लिए होगा वो? आपने आंखें मीची तो आपका नहीं, छुट्टी। हमारे पास इतने साधन हैं जो हम 10 जन्म खा सकते हैं, फिर भी हम इकट्ठे किए जा रहे हैं, परंतु हमारा कितना है उसमें? आंख मिटी, आप मरे, जग पर आपका तो नहीं रहा, और सारा कुछ आपकी बॉडी के नाम से लिखवाया जाता है। आप बैंक अकाउंट खोलोगे बॉडी के नाम से, कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदोगे बॉडी के नाम से, ये बॉडी गई, आपका है ही नहीं। एक्चुअली तो जीते जी भी आपका नहीं है, बॉडी के नाम से। इसलिए गहरी सोचने की बात है, एक समझदार बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जो कुछ मैंने कमाया है वो मेरा है, मेरे पास रहे, फिर उसका मैं पूरा लाभ लूं। खाली आपके पास धन पड़ा है बैंक में मिलियन टू बिलियन, परंतु मेरे काम आए, मेन क्वेश्चन ये है। तो लोग कोई इंश्योरेंस कराता है, कोई शेयर खरीदता है, वगैरह वगैरह। तो शुरूड बिजनेसमैन वो है जो यहां तक सोचे कि मेरे साथ अगले जन्म भी चले, मेरा कमाया हुआ धन यहीं मैं छोड़ जाऊं, नहीं, मैंने कमाया तो अगले जन्म के सदा मेरे साथ रहे। अब ऐसा सौदा कौन करवा सकता है? और खाली धन तो एक माध्यम है, अगर आपके पास उस धन को प्रयोग करके स्वास्थ्य नहीं है, पूरी आयु नहीं है, और तो और कुदरत की तरफ से भी आपको सुख नहीं है, तो क्या फायदा? आजकल तो हर व्यक्ति डरने लग गया है कि भाई रोज अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, क्या देखते हैं कि यूक्रेन का वार कहां तक पहुंचा है, ईरान का वार कहां तक पहुंचा है, तो अपने घड़ियां गिनते हैं। वहां तो बम फटा सारे गया, यहां फट गया तो अच्छा। इसलिए मेरे को विषय दिया गया कॉल ऑफ द टाइम, आज की परिस्थिति में हमने क्या करना है। तो बहुत खतरा है, जो इंश्योरेंस करने वाले हैं वो भी जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? और जिंदगी भर में भी पैसा बहुत है मेरे पास, पर क्या मेरी ये गारंटी किसी कोई दे सकता है कि मैं पूरी आयु जीऊंगा? अब ये तो 91 साल की मेरी शरीर की आयु देखकर कह रहे हैं वाह, एक भाई बाहर मिले आप 125 साल जिए, वाह। क्वेश्चन ये है, एक दो व्यक्तियों का सवाल नहीं है, जिस परमात्मा ने ये दुनिया रची, जब उसने ये दुनिया रची तब हम कैसे थे? क्या हमने इस दुनिया के बिजनेस में कुछ पाया है या खोया है? तब हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं? ذرا سوچئے، ہر چیز نئی رچی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پرانی تو نہیں رچی جاتی، پرانی ہو جاتی ہے. آج ہم کون سی دنیا میں ہیں، چکا چاند چھوڑ دیجئے، جیون کا حال دیکھیے، نہ ہماری آیو ہمارے بروس کنٹرول میں، جتنی آیو ہے اس میں روگ شوق ہمارے کنٹرول میں نہیں، اپنے پریوار والے ہمارے کنٹرول میں تو چھوڑو، ہمارا من ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں، کتنی ساری آپدائیں آتی جاتی ہیں، جیسے کوئی سمندر میں ہاتھ پیر مارتا ہے، جب کروڑوں روپیہ ہو جاتا ہے ہم کسی کے شیئر خرید لیتے ہیں، اچھا اور مصیبت کہ میں اچھا بھلا ہوں، اس کا شیئر اپ گیا تو میرا اپ ہارٹ چلے جاتا ہے، خون تیز ہو جاتا ہے، اس کا شیئر لو گیا تو میرا خام کھا کی مصیبت، جیسے کوئی بجلی کے سوئچ میں ہاتھ ڈال لے. کیا کر رہے ہیں ہم، بہت عقل مندی کر رہے ہیں، روز دیکھتے ہیں میرا اتنا بڑھ گیا اتنا گھٹ گیا. اب کسی کا بی پی اپ ڈاؤن ہی ہوتا رہے، بیچارے کا کیا حال ہوگا. اس لیے من کی کھیر تو آپ کھا سکتے ہیں، پر پریکٹیکل جیون میں دیکھیے کہ جس نے یہ دنیا رچی تھی، اب آ جاؤ، جب اس نے دنیا رچی تھی تو اس دھرتی پر جب ہم کو بھیجا تھا، کیا کسی چیز کی قیمت تھی؟ پرائس ویلیو منی اس کا قیمت لگائی جاتی تھی؟ اچھا وہ سمے تو چھوڑ دو سورگ کا، آج کا دیکھ لو، آج بھی قدرت نے کسی چیز پر پرائس ٹیگ نہیں لگایا. جتنی ہوا ہے ایٹموسفیئر میں وہ قدرت نے فری دیا یا قیمت لگائی ہے؟ فری دیا. آپ نے اس کو سلینڈر بنا کے بیچنا شروع کر دیا وہ اور بات. پانی ہے، قدرت نے ہم کو تین طرح سے پانی دیا، آکاش سے برسایا جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دھرتی پہ سرفیس پہ چلایا، اتنی ساری ندیاں چلتی رہتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دھرتی کے اندر کنویں میں بھی چلایا، 3/4 دنیا میں پانی ہے، اور ہم نے ایک چھوٹی سی بوتل، اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، لکھا ہوتا اسپرنگ واٹر، پتا نہیں کہاں سے آتا، کہا جاتا ہے کہ جاپان کے ایک حصے میں سمندر میں اتنا بڑھیا پانی ہے، اس کو انڈین بھی کچھ لوگ خرید کے پیتے ہیں، 1,000 روپیہ اس کی قیمت ہے بوتل کی. اب دیکھیے پانی کو بھی ہم نے قیمت لگا دی، ہوا کو بھی قیمت لگا دی، دھرتی بھگوان نے تو فری دی تھی، اب ہم نے، اب جہاں بڑے بڑے شہروں کے رہنے والے وہ تو کہتے ہیں دھرتی کا چھوڑو، دھرتی کے اوپر جو فلور بنائے جا رہے ہیں کبوتر کھانے، اس کا بھی پر سکیئر فٹ کے حساب سے قیمت ہے. اچھا پھر جتنے پھل فروٹ ہیں، آپ کرافٹ مارکیٹ میں جائیں گے یا کہیں، وہاں تو ریٹ ہوگا، اور آج کل تو چھوٹے چھوٹے پیکٹ بناتے ہیں، لیکن قدرت نے کسی فروٹ پر قیمت لگائی؟ قدرت نے دودھ پر قیمت لگائی؟ قدرت نے تو ایک پودا پیدا کر دیا جس میں کاٹن نکلے آپ کپڑے بھی بنا سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ دھیرے 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 آج ہم گنتے ہیں، اتنے بلین اتنے ملین، وہ تو کاغذ ہے، بڑا ونڈرفل کاغذ ہے. آئی پرومس ٹو پے 2,000 روپیز، وہ کہے گا لاؤ کہاں ہے، تو وہ کہے گا 500 کے 4 نوٹ، یہ پرومس پورا ہو گیا، نوٹ کے بدلے نوٹ لے لو، یہ ان کا پرومس ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ریئل لائف میں آپ دیکھیں گے کہ دھیرے 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 کچھ ایسا دھوکہ ہم کو مل رہا ہے، ہم ہو گئے ہیں بینکرپٹ. ہماری سرکار پہ دیکھ لو پر ہیڈ کتنا لون ہے، بینکرپٹ ہی بینکرپٹ ہے، اور سسٹم ہی ایسے ہیں، آپ لون لے کر بزنس کرو گے آپ کو فائدہ ہے، انٹرسٹ टैक्स फ्री हो जाएगा। अपने पैसे से बिजनेस करोगे तो आपको टैक्स लग जाएगा। सिस्टम ये बड़े वंडरफुल है। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो असली सोना होता था, गोल्डन एज स्वर्ग, फिर उसमें थोड़ी चांदी मिला दी गई, सिल्वर एज आ गया, तांबा मिला दिया गया, कॉपर एज आ गया, फिर आ गया जी कलयुग, आयरन एज कहो, स्टेनलेस स्टील एज कहो, कुछ भी। फिर कलयुग के लोग बहुत समझदार हैं, जो जिसमें हम बैठे हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मिलावट मिलावट क्या करनी है, नकली को ना चालू करो, सोने में चांदी मिलाओ, तांबा मिलाओ, तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल गोल्ड उसकी चमक असली से भी ज्यादा, आर्टिफिशियल हीरा और असली में आप पहचान नहीं सकते। आर्टिफिशियल ऑरेंज जूस ज्यादा स्वीट, रियल ऑरेंज जूस कोई पीता नहीं, सब आर्टिफिशियल, इतना अट्रैक्टिव कि लोग असली को छोड़ छोड़ के नकली में आ गए। अच्छा, अब क्या हुआ, फिर उन्होंने सोचा नकली काहे को, और आगे बढ़ो। उसके बाद हो गया वर्चुअल, अपना मोबाइल खोल लो, पहाड़ देखो, नदियां देखो, रंग बिरंगे पंछी देखो, शहर में पंछी नजर नहीं आएगा, कौआ भी भाग गया अब तो। अच्छा, आप देखेंगे कि कोई चिड़ियाघर में जाके तितली देख सकता है, जो पंछी हमको खुश रखते थे, कहीं मोर था, तोता था ना, वो कहाँ गए, वो बूशर्ट पे आ गए, छप्पे में आ गए। तो हमारा ये तो हाल हो गया, शहर खाली के खाली पड़े हैं, चेहरे कहाँ, खुशी हम ढूंढ रहे हैं तो मुश्किल से कोई मुस्कुराता है। अब देखिए, मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद, चार आजकल के ट्रेडमार्क हैं। मायूसी, मगरूरी माने ईगो, मुरझाइश माने डिप्रेशन, मतभेद माने भेदभाव, अपने अंदर ही मतभेद चल रहा है। तो हम कहाँ के कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं। मैं कपड़े वाला हूं, मैं समझता हूं मैंने घड़ी वाले को ठग लिया। जब घड़ी वाले के पास कपड़े वाला जाता है, वो कहता है मैंने इसको ठग लिया। सभी एक दूसरे को ठग रहे हैं, बड़े खुश हैं मैंने इसको ठग लिया। अरे तुम भी तो ठगे जा रहे हो। तो इस हालत में ये दुनिया आ गई है। तो ये नकली कार्रवाई कि ये वो, आप देखेंगे हमारे देखते देखते पैसा की क्या कीमत है, इतने सारे नोट लाओ तो सब्जी आती है। तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि हम कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें खाली हमको पैसा न टिका दें, क्योंकि पैसे से हम रोग मुक्त नहीं हो सकते। पैसे से हम बढ़िया हॉस्पिटल में जा सकते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं कैंसर का पेशेंट हो गया, कैंसर हॉस्पिटल में चले जाऊंगा, और पैसा है तो मैं स्पेशल वार्ड ले लूंगा, और पैसा है तो डॉक्टर मेरे कमरे में आ जाएगा, ये सब ठीक है। लेकिन कैंसर का दुख तो मैं ही भोग रहा हूं, चाहे बढ़िया हॉस्पिटल में बैठ हो ही ना। कई लोग ये भी सोचते हैं, अरे पैसा होगा ना तो हार्ट ट्रांसप्लांट करा लूंगा। अरे भाई, तेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करने की नौबत ही ना आए ये नहीं सोचते। पैसा होगा तो ये पैसा आपको क्या दे सकता, आपका दुख दूर कर सकता। किसी के घर में शोक हो जाता है, यंग कोई व्यक्ति डेथ हो जाती है, उसको पैसा दूर कर सकता। अपनी लाइफ में पैसा इज ए मींस। लेकिन आज हमने क्या किया, कभी कहा जाता था इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, आज कहा जाता है इफ वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, मेरी लुटियाई डूब गई। इसलिए रियलिटी से हम दूर, और आगे आगे वर्चुअल से अब हम एआई पर भी आ गए हैं। अच्छा, वो और भी वंडरफुल चीज है, वो हमारा बिल्कुल सत्यानाश करने ही वाली है, अभी उसकी थोड़ी थोड़ी रौनक लोग देख रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हमने साइंस बनाई बहुत खुश थे, परमाणु शस्त्र बना लिया अपनी मौत के लिए। दुनिया में एक दो की मौत के लिए लोग कोर्ट में लड़ते रहते हैं, इसके मर्डर हो गया, यहां परमाणु शस्त्र अब तो आने वाले हैं, क्या होगा, हमारी सारी वो कहां जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है ये ब्रह्मा कुमारी जो निकली है, जिसमें हम आए हैं, आप आए हैं, बड़े फायदे की चीज। मैं 1956 का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और हमको क्या सिखाया जाता था सब जानते हैं। अकाउंटेंसी में होता है जो आए वो फायदा है, जो जाए वो घाटा है, सीधा असूल है। बिजनेसमैन भी यही समझता है, परंतु मैंने इसमें गहराई से देखा कि ऐसा नहीं है। जो जाए वो उसमें फायदा है। आप लोग भी पैसा घर में नहीं रखते, इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि उससे कुछ आता है। तो वो सीखा कि दुनिया में भी अगर आपने 1 करोड़ रुपया लेना है तो आपका हाथ नीचे होगा, चेक ही हो जाए 1 करोड़ ऐसे पकड़ेंगे। और अगर आपने 1 लाख भी देना है तो आपका हाथ ऊपर हो। अब बताओ कि देने वाला धनवान है या लेने वाला, अमाउंट छोड़ दो। तो हम लोग देवता थे, हमारे पूर्वज देवता थे, देवताओं की मूर्तियां आज भी हम अपने पूर्वजों की पूजते हैं, अपने नाम देवताओं पर रखते हैं। नहीं, अगर हम देवता नहीं थे तो हम अपने नाम देवताओं देवियों पर क्यों रखते हैं, घर में उनकी मूर्तियां क्यों रखते हैं। अब देवता का मतलब क्या होता है, देने वाला। और आप लोगों को बड़ी यहां ट्रेनिंग दी जाती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये वो, क्या होता है, गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, यही कहा जाता है, गिव लव टू गेट लव, देना पहले पड़ता है। इसलिए देवता, मैंने जिसके पास इतना हो कि देता जाए, यहां पर आपको वो बिजनेस सिखाया जा सकता है जिसमें आप एक जन्म नहीं, पूरा देवी देवताओं का आधा साइकिल आप ऐसे देने वाले बन जाओ कि लेने वाला कोई रहे ही ना। ऐसी दुनिया भगवान ने हमको बना के दी थी, आज सब लेने वाले हैं, लेवता। अब बताओ सारे लेने वाले बन जाएंगे तो देगा कौन। वो आपने कहानी सुनी है कि किसी बादशाह ने कहा मेरे राज्य में ऑनेस्टी की कितनी ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो बताओ। उसने कहा हजूर अनाउंस कर दो कि 1 लोटी दूध 1 तालाब में हर एक व्यक्ति डालेगा, रात को डाल के जाएगा। तो हर एक ने सोचा और तो दूध ही डाल लेंगे, मैं पानी डाल देता हूं। तो सुबह उसके सारा तालाब पानी से भरा हुआ था। ये ऑनेस्टी की लेवल है। ऑनेस्टी, हम अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं है, इसलिए भगवान कहता है मेरे साथ बिजनेस करो। एक तो मैं सर्वशक्तिवान हूं, दूसरा आपका तन मन धन, सिर्फ तन मन धन नहीं, आज आप बहुत धनवान व्यक्ति भी हैं, बहुत बढ़िया कार है आपके पास। जब आप शहर में जाते हैं तो क्या होता, चारों तरफ रबिश के ढेर लगे होते हैं कि नहीं होते, आप देखते तो हैं। चारों तरफ आप गरीबी देखते हैं कि नहीं, देखते तो हैं। देखते हुए हम आंखें बंद कर लेते कि मैं अपनी कार में बैठा हूं, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब गर्मी पड़ती है, जब मान लो अर्थक्वेक आता है, जब फ्लड आता है, तो आपके ऊपर भी असर आता है कि नहीं आता। आप सोचते थोड़ा मैं बच जाऊंगा, थोड़ा बाकी डूब गए हैं मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा दिन आने वाला है। कॉल ऑफ द टाइम यही है जो भगवान ने बताया है कि हम लोग, मैंने, वो कहता है क्या दुनिया बना के दी थी, तुमने उसको उल्टा कर लिया है, उल्टे काम करते हो। अब ऐसा दिन आने वाला है, ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारी भी जानती हैं कि अब ये साइकिल पूरा हो गया, ये चक्कर पूरा हो गया, इसका अंत है। इस समय हमारे सबके ऊपर डेबिट अकाउंट है, इसीलिए हम रोक, कोई एक व्यक्ति नहीं है आज के दुनिया में जो कॉन्फिडेंस से कह सके मैं जिंदगी में कभी बीमार नहीं हुआ। उसको तो छोड़ो, एक भी व्यक्ति सारी दुनिया में नहीं है जो कहे मैं तनाव मुक्त हूं, मैं चिंता मुक्त हूं, मैं भय मुक्त हूं, मैं भविष्य के लिए अनिश्चितता मुक्त है ही नहीं। बताओ हमारी जिंदगी क्या हुई? हर वक्त हमें डर है, आज भी हम गए, अभी भी हम गए, तो क्या इन सब चीजों से छूटने का कोई उपाय है? अब इसमें देखिए, लोग समझते हैं छूटने का मतलब है मैं बच जाऊं, मेरी प्रॉपर्टी बच जाए तब छूटना है। तो कहते हैं अर्थक्वेक आ गया तो ब्रह्मा कुमारियां क्या बच जाएंगी, फलाना होगा तो ब्रह्मा कुमारियों की बिल्डिंग नहीं गिरेगी। उनको मालूम ही नहीं है कि फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग ये मानते हैं, गौर से सुनना, हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जो यहां की विशेष ज्ञान है, जिस आज का विषय है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। हमारे स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट विषय क्यों रखा गया? क्योंकि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है। आप देखिए, हमारे अंदर एक ऐसी चीज है सबके अंदर जो कभी नष्ट नहीं हो। अच्छा, हमारा सब कुछ चला जाए, वो चीज है जो सब चीज को दोबारा पैदा कर सकती है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? एक वृक्ष होता है, एक बड़ा वृक्ष इतने से बीज से पैदा होता है, उसमें सारा वृक्ष होता है। अगर बीज बोल सके तो बोलेगा कि मेरे से ये वृक्ष निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे फैलेगा, पत्ते फल फूल देगा बहुत सा, फिर सूख जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? वृक्ष सूख गया, उसकी लकड़ी लोग ले गए, फल फूल लोगों ने खा लिए, वो जो छोटा सा बीज है वो उस वृक्ष को पुनः पैदा कर सकता है। और ये पक्की बात समझ लीजिए, सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, मुर्गी पहले या अंडा पहले? आपको पता है, क्योंकि मुर्गी से अंडा निकलता है, अंडे से मुर्गी निकलती है। इसको चेंज कर लीजिए, बीज पहले या वृक्ष पहले? तो जब तक वो बीज है वृक्ष पैदा होता ही रहेगा। इसको कहते हैं एटर्निटी, शाश्वतता। अब भगवान गीता का हमें क्या कहता है? हम सब लोग भारतवासी गीता को तो श्रोमणि शास्त्र मानते हैं, भगवान के वाक्य मानते हैं। वो कहता है, सिंपल बात कहता है, देखो तुम फर्स्ट पर्सन में, तुम यानी आप और मैं, तुम एक ऐसी चीज हो जो कभी खत्म नहीं होती, जो अनादि है, अविनाशी है, शाश्वत है, जिसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, हवा, वो तुम हो। इसलिए तुम्हारा कोई सब कुछ भी ले रहे, हम लेने को इस हिसाब से नहीं गिनते कि मेरा मकान कोई ले गया, मेरा, भगवान कहता है कोई लेके ना भी जाए, तुम्हारा शरीर तो जाना ही है, चेंज होता रहता है, उस वक्त भी तो तुम्हारा सब कुछ जाता है, लेकिन जाता कुछ नहीं है। जो कुछ तुमने उस बीज में भरा हुआ है वो पुनः तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। आप आत्मा जाएगी, जिसकी ऐसी क्वालिटी उसके अगले घर में पैदा होकर उसी तरह का वातावरण मिल जाएगा। और आसानी से समझना हो, हर डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को 3-4 साल रखते हैं, फिर चेंज कर देते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। उसका बंगला होता है, उसका ऑफिस होता है, उसका स्टाफ होता है, बहुत फैसिलिटी होती है। जब एक कलेक्टर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बदला जाता है, क्या वह उदास होता? वो कहता है नहीं, यहां के कलेक्टर बॉम्बे के कलेक्टर बंगले से मैं पूना के कलेक्टर बंगले में चला गया, मेरी वही पावर्स है, वही फैसिलिटी है, मैं तो कलेक्टर हूं। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें, उस बात को हम भूले हुए हैं, इसलिए हम साधन बहुत इकट्ठे करते रहते हैं, जरूरत से ज्यादा इकट्ठे करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, हमारी आयु घट रही है उसका कारण नहीं जानते, हमें दुख हो रहा है उसका कारण, हम समझते हैं दुख सुख तो शुरू से चला आता है, ऐसा नहीं है। इसलिए जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानते कि मैं वो शाश्वत एंटिटी हूं, मृत्यु की बात छोड़ो, जीते जी इस जीवन में हम क्योंकि आत्मा को नहीं जानते, तो हम शरीर की खुशी, शरीर का सुख, शरीर के साधन देखते हैं, लेकिन वास्तव में जिंदा चीज कौन सी है, अनुभव करने वाली चीज कौन सी है, सुख दुख को भोगने वाली चीज कौन सी है, सुख दुख की अनुभूति करने वाली चीज कौन सी है, शरीर है या आत्मा है? सोचिए, आपकी आत्मा निकल जाए तो शरीर को आप दूध पिलाओ, शरीर को आप अच्छे वस्त्र पहनाओ। आजकल तो ऐसे ही करते हैं, आत्मा को तो जानते नहीं, जिंदा जीव व्यक्ति को कुछ नहीं देंगे, जब उसकी डेथ होगी तो बढ़िया से बढ़िया शॉल, बढ़िया से बढ़िया चीजें ला के देंगे, और तो और एक दीपक रखेंगे कि भाई इसको आत्मा को रास्ता मिलता रहे। हम करते आए हैं, सोचे कभी सोचे नहीं, आत्मा तो पहले ही निकल गई थी, अब इस डेड बॉडी को क्या रास्ता दिखना है क्या? तो हमारी सारी चीजें बॉडी से कनेक्टेड हो गई, इसलिए हम रिलेट नहीं करते। दुख किसको होता है, बॉडी को होता है या आत्मा को होता है? आत्मा निकल जाए काट दीजिए, नहीं होता। सुख किसको होता है, आत्मा को। प्रेम किसमें है, आत्मा में है। अगर डेड बॉडी हो जाए अंकल की भी, रात को उसका भूत आके खड़ा हो जाए तो आप, वो कहेगा आओ बेटा, आप कहेंगे भूत या आप उसको प्यार करेंगे? तो इसलिए इस संस्था में पहली बात ये सिखाई जाती है कि अमीरी और गरीबी, सुख और दुख, हाईनेस और लोनेस, ये आत्मा की चीज है। व्यक्ति आत्मिक स्थिति में अगर ऊंचा है, अपने अंदर भरपूर है, तो उसको हर चीज कुदरत प्रोवाइड करेगी। अगर उसने अपनी आत्मिक स्थिति घटा ली तो कुदरत उससे छीन लेगी। दूसरे शब्दों में, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है? हमारी जिंदगी का पर्पस ये है कि जिस स्थिति में मैंने जन्म लिया उससे मैं बेटर स्थिति में शरीर छोड़ू, तब जाके मेरी आत्मा इस जन्म में भी बेटर होते होते उसके अनुसार सुख भोगेगी और शरीर छोड़ने के बाद भी बेटर लीव करेगी। अगर मैंने उस स्थिति से डिसऑनेस्टी करके, धोखा करते, गलती खा के मैंने कोई साधन वाधन इकट्ठे कर लिए तो मेरा डबल लॉस होगा। एक तो मेरी आत्मा की क्वालिटी घट गई, तो मुझे इस जन्म में भी किसी भी नकली चीज का सुख नकली होता है। आजकल आप जानते हैं नकली की चीज का सुख इतना नकली है, सारे लोग नकली हो गए। फलाने की शादी है, चलो भाई फाल वाले ये दो टोकरी दे दो, अच्छा वहां जाके वो टोकरी रखेंगे, अच्छा मुंह दिखा के आ गए, ना कोई खुशी है ना कुछ है। फल वाले को भी पता है इसमें क्या डालना है। एक ऑर्डिनरी कस्टमर अगर उससे ऑरेंज भी खरीद रहा हो, उसको छोड़ छाड़ के फल वाला भागेगा, उसे कभी इंसल्ट करते हैं। कहने का भाव ये है कि हमको पता ही नहीं है, जैसे किसी ने कहा था, कहाँ रखोगे खुशी? खुशी आंतरिक चीज है, आंतरिक मैंने आत्मा की चीज है। तो हम आत्मा को किसके साथ जोड़ें जो हमें इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी जो परमात्मा ने हमें दिया था फ्री ऑफ चार्ज, उसके हाथ में है। हम कितनी भी चलाकी कर लें, कितनी चतुराई कर लें, वो हमसे ज्यादा चतुर है। तो वो हमको कहेगा तू ये चाहता ना ये ले ले, लेकिन उसको पता है इसको मैंने दे दिया इससे इसको दुख ही होने वाला। भस्मासुर की कहानी है, उसने कहा भगवान मुझे भस्म देने की शक्ति दे दो। उसको पता था ये किसी को भस्म करने वाला है, उसने दे दी, आखिर उसने अपने आप को भस्म कर लिया। इस दुनिया में किसी को कितना भी धन दे दो, पुत्रवान बना दो, प्रॉपर्टी वाला बना दो, वेल पोजेस्ड बना लो, वेल पोजिशनड बना लो, कोई फायदा नहीं है जब तक व्यक्ति बेसिक्स को नहीं जानता। तो हमारे देवी देवता बेसिक्स को जानते थे, आज हमने देवी देवताओं को खो दिया है और अपने नाम देवी देवताओं पर रखे हुए हैं, बड़े मजेदार नाम रखे हुए हैं। आप देखिए, सीता जी देवी थी, राम जी देवता थे, सब जानते हैं। आजकल आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे पुरुष जिसका नाम है सीताराम, अरे भाई तू सीता है या राम है, सीताराम कैसे हो गया तू? राधे श्याम भी मिल जाएंगे। फिर बॉम्बे में किसी ऊपर के चबारे में किराए पर रहते हैं, नाम है त्रिलोकीनाथ। अच्छा, अब बताइए ऐसा है कि नहीं है? इस प्रकार से हम लोग वंडरफुल नाम रखते हैं, अर्थात नाम देवी देवताओं के नाम पता नहीं। अब अपने आप को देवता भी नहीं कहलाते, शर्म के मारे हिंदू कहलाते हैं, हिंदुओं के देवता। अरे भाई, हिंदुओं के देवता तो देवता के धर्म किसका था? हमारा ही तो था, हम लायक नहीं रहे। इसलिए यहाँ आपको एक फार्मूला सिखाया जाएगा। कोई यहाँ कह रहा था ब्रह्मा कुमारी में आते हैं वो कि चंदा नहीं लेते, डोनेशन नहीं लेते, कैसे चलते हैं? ब्रह्मा कुमारी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। आपके जितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ बैठे होंगे, उनसे बड़ा बिजनेस ब्रह्मा कुमारी का है। 147 देशों में आप सोचिए ब्रह्मा कुमारी के ब्रांच है। हमें फख्र होना चाहिए कि भारत की एक ऐसी संस्था एक ऐसी विद्या सिखाती है जो अन्य अन्य देशों के धर्मों के लोग अपने अपने को छोड़कर उस विद्या को सीख रहे हैं। भारत जगत गुरु बन रहा है, वो सारे वीसा लेकर माउंट आबू आते हैं। आप किसी भी एम्बेसी में जाके देखेंगे, भारतीय एम्बेसी में सुबह अंग्रेज फॉरेनर खड़े होंगे, माउंट आबू का वीसा बना रहे हैं। और दुनिया जगत गुरु वो होता है जिसकी चीज का कोई कंपटीशन ना हो। हम चांद पे पहुंचने में जगत गुरु नहीं बन सकते, दूसरे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन भारत का योग, भारत की आध्यात्मिकता जगत गुरु बनाती है। और अब ये बना रही है। गुरु मैंने होता है जिसके पास वो गुरु हो। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, सिर्फ परमात्मा के लॉज को समझना है। तो परमात्मा का लॉ क्या है? अब मैं लास्ट में, क्योंकि मेरा कितने देर तक टाइम है भाई? हाँ, अच्छा, परमात्मा का लॉ क्या है जिसको हम भूले हैं? छोटा सा लॉ है। परमात्मा का एक लॉ था जिसको हमने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लिया, और सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मानव ने एक गलती की थी जिससे उसको स्वर्ग से धक्का दे दिया गया था। ईसाई भी यही, वो लॉ ये है, गीता में लिखा हुआ है कि तुम आत्मा हो। ठीक है, आप आत्मा है या शरीर है? जब आपने शरीर लिया था उससे पहले आप कहां थे? अभी तो आप शरीर में हैं। जब आप शरीर छोड़ेंगे तो खबर खत्म हो जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, या आपकी आत्मा कहीं जाएगी? नहीं मानते तो कम से कम दो बात तो आप कहते हो, ये स्वर्गवास हो गया, कहते हो कि नहीं कहते हो? जब कोई शरीर छोड़ता है उसको इज्जत देने के लिए बेचारा होता है या नहीं होता, अपना पूर्वज है, क्या कहते हो? पिताजी कहाँ गए? वो जी स्वर्गवास हो गए। ठीक है, इससे दो बातें निकलती हैं, ये स्वर्ग नहीं है इसलिए स्वर्गवास हुए। अच्छा, फिर दूसरा नाम लेते हैं, परलोक सधार गया। ठीक है, इसका मतलब ये आत्मा का लोक नहीं है, परलोक आत्माओं का लोक है। आरती में हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। तो सार ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ईश्वरी लॉ है। अच्छा, जब तक देवी देवता इस लॉ को समझते थे, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, तो क्या था? उनको पता था मैं आत्मा हूं, आत्मा सदा रहेगी, आत्मा के अंदर जो प्योरिटी है, आत्मा के अंदर जो प्रेम है, आत्मा के अंदर जो सत्यता है, वो उनको देवता बनाए रखती थी। सत्य का क्या मतलब होता है? जो सदा रहे, आत्मा सदा रहती है। प्रेम, असली प्रेम वही होता है जो आत्मा का प्रेम होता है। आपने दो शब्द सुने आजकल, जो भी प्रेम करते हैं वो क्या कहते हैं? फॉल इन लव कहते हैं। क्या कहते हैं? ही फेल इन लव। अब प्रेम और गिर गया, खड्डे में चला गया, फॉल इन लव। राइज इन लव क्यों नहीं कहते भाई? क्यों नहीं कहते? क्यों? कि शारीरिक है तो शरीर तो भारी होता है, तो भारी चीज तो नीचे जाएगी। आत्मिक लव राइज इन लव है, तो देवता आत्मिक लव करते थे। अब हुआ क्या कि अमर लोक कहलाया, देवलोक कहलाया। आधा टाइम के बाद हमने गलती की, वो लॉ तोड़ दिया, हमने अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दिया। बस हम कब से दुखी हैं, कब से हम इस चक्कर में हैं, धोखे में हैं, जब से हमने आत्मा की बजाय शरीर मानना शुरू किया। देवताओं का लोक हमारा अमर लोक कहलाता था, आज हमारा लोक क्या कहलाता है? मृत्यु लोक। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। तो सारे डरे हुए हैं, हम तो मर जाएंगे, मरने से बचने को भागते हैं, प्रेयर करते हैं, हे भगवान मुझे मृत्यु से अमर की लोर ले चल। भगवान हंसता है कि तुम हो ही अमर आत्मा, धोखे से तुम अपने आप को बॉडी मान रहे हो, बॉडी को दुख सुख का कारण आत्मा है वो तो। इसलिए जब से हमने मेरे को मैं कहना शुरू किया, तब से हमारी ये हालत हुई है। ये शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं। मेरा नाक, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरी टांगे, मेरा बॉडी, तो मैं तो दूसरा है। और मेरा बोलने वाला वो आत्मा है, डेड बॉडी बोल के दिखाए। इसलिए भगवान कहता है, मैं आकर के यहां ब्रह्मा कुमारी में एक ही शिक्षा देता हूं, पहले तो मैं को मैं समझो, इसको मेरा समझो। मेरा हमेशा दूसरा होता है, मैं ओरिजिनल होता है। तो जो कुछ आपने भरना है, जो कुछ कमाई करनी है, वो मैं में जाए। और मैं है सत्य, सत्य मैंने एवरलास्टिंग। अगर खुशी भरोगे तो अब भी खुशी, आगे भी खुशी, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ भर ली तो आप इस जन्म में भी दुखी रहोगे, अगले जन्म में भी। तो परमात्मा पहले तो ये सिखाते हैं, फिर कहते हैं, हम कहते हैं परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो हमारे दो पिता हैं, एक तो शरीर का पिता, उसको हम परम पिता नहीं कहते, परम पिता उसका भी पिता है। तो परम पिता परमात्मा शरीर का है या आत्मा का है? आत्मा का है। अब हम अपने आप को शरीर मान के परम पिता परमात्मा कहेंगे, हमें भगवान भी शरीर वाला चाहिए, फिर हम श्री कृष्ण को, श्री राम को, या किसी उसको भगवान मान लेंगे, किसी गुरु को भगवान। भगवान कहता है कि नहीं, तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं। अब जब तुम मेरी संतान बन गए तो क्या होता है? अगर पिता, आपको पता है, दुनिया में पिता के संतान ना हो तो गोद में लेकर भी किसी को संतान बना के उसको जायदाद देता। भगवान कहते हैं, एक बारी मेरी संतान बन गए, तुम लंगड़े हो, लूले हो, दुखी हो, उधार लिए हुए हो, तो मेरी संतान बन गए। अब परमात्मा के संतान बनने से परमात्मा हमारे सारे दुख दूर करता है। प्रेयर करने से नहीं है, भगवान दुख दूर कर दे। तो ये फार्मूला यहां सिखाया जाता है, पहले परमात्मा को जाने, उसकी संतान समझे, फिर हमारे अंदर जो डिफेक्ट आए हैं, जैसे वायरस आता है, भगवान कहता है तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, देवताओं में अहंकार नहीं था, तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया, देवताओं में क्रोध नहीं था, तो मोटे पांच विकार आत्मा के अंदर आ गए हैं, वो भूत हैं। हम अच्छे भले सिविलाइज्ड व्यक्ति है, क्रोध करना शुरू कर देता, उसकी बुद्धि और बोल जाती, बाद में सोचता मैंने क्या किया। अहंकार में आके व्यक्ति क्या कुछ कर लेता है। इसलिए फिर भगवान अपने साथ योग लगवा के, अर्थात अपने साथ प्रेम से नाता जुड़ा के इनको निकलवाता है। आप निर्विकारी हो गए, सर्वगुण संपन्न हो गए, तो इसी दुनिया में सतयुग तो आएगा, उसके आप लायक बनते हैं, वो भी आने वाला है, क्योंकि विनाश की तैयारी है। लेकिन इसी दुनिया में, दुख की दुनिया में, अगर आपको सुख महसूस ना हो, शांति महसूस हो, अति सुख और शांति महसूस ना हो, तो हम गुआ हैं। यहां सारे लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी गुआ हैं कि होता है। इसलिए आप ठीक जगह आए हैं, बड़ा बिजनेस करिए, भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाइए, तो फिर देखिए, ये जन्म तो सफल हुआ, आपके अगले जन्म भी जिस स्वर्ग का सुख होता है, जहां किसी चीज को प्राइस नहीं है, हर चीज सतोगुनी है, खराब चीज दिखेगी नहीं आपको, छिपकली, मच्छर, कछुआ ये सब चीजें बिच्छू नहीं दिखेंगे, स्वर्ग है वहां आप जा सकते हैं। ओम शांति।